नसीब से ज़्यादा कीमती दुआ होती है, क्योंकि जब ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाए तब इंसान के पास सिर्फ दुआ ही बचती है जो हमारा नसीब बदल देती है। प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्रोग्राम को शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से। अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर नाज़रीन। उम्मीदवार है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी खूबसूरत सी और हशाश पशासी सुबह की सुबह का आगाज़ हमारे खूबसूरत से प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी के साथ कर चुके होंगे। जी नाज़रीन, आप सब जानते हैं ईद उल अज़हा का दिन नज़दीक है, आज रोज़ रोज़ अरफा है। और सबसे पहले मैं शुरू करूं, एजाज हुसैन साहब ने सुबह सुबह हमें कमेंट किया है कि उन्होंने लिखा है कि हमें रोज़ अरफा की दुआ में याद रखेगा। हमारी भी यही आपसे गुजारिश है कि आप सब हमें रोज़ अरफा या दुआए अरफा वाले दिन हम सबको याद रखेगा, हमारी पूरी टीम को याद रखेगा, और नेक नेक और अच्छे अच्छे काम करके अपने दिन का आगाज़ कीजिएगा। जी नाज़रीन, हज का और तमाम हाजी जो होने वाले हैं उनको हम तहे दिल से हम सबको मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम सब की ज़िंदगी में ये खुश नसीब लम्हा आ सके जब हम सब खाने काबा की ज़ियारत कर सके। जी नाज़रीन, जिस तरह एजाज हुसैन साहब ने सुबह सुबह हमको कमेंट किया, इस तरह आप भी हमको कमेंट कर सकते हैं। आपकी कोई भी बात हो हमसे शेयर कर सकते हैं ईद उल अज़हा के बारे में, या कोई भी आपकी जो नज़रात है, आपको कुछ पसंद आ रहा है कुछ पसंद नहीं आ रहा, हमें ज़रूर बताइए। हम बेसब्री से आपके कमेंट्स का इंतज़ार करें। तो फिर चल के देखते हैं कि आप किस तरह हमसे रابطہ कर सकते हैं और कौन कौन से रास्ते हैं जिनसे आप हमसे रابطہ कर सकते हैं। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। एक नहीं कई रास्ते हमने आपको दिखाए जिससे आप हमसे रابطہ कर सकते हैं, चाहे वो मैसेज रिकॉर्डेड पे हो, चाहे वो फ़ोन नंबर हो, चाहे ईमेल, या चाहे फेसबुक का एड्रेस। इन तमाम रास्तों से आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लाइव प्रोग्राम में हम आपकी कॉल्स लेंगे, आपके कमेंट्स लेंगे, हमें बहुत खुशी होगी। जी नाज़रीन, हफ्ते का मौजू चल रहा है हमारा ईसार और दरगुजर, आपका क्या ख्याल है इस बारे में, ज़रूर हमें बताइएगा। वैसे तो हमारे दीन में जगह जगह ताकीद की गई है इस बात की कि दरगुजर किया जाए, और हमेशा कहते हैं माफ़ी मांगने वाले से माफ़ करने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। इस बात का ख़ास ख्याल रखिए। अगर कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है, अगर किसी से कोई गलती हो गई है, ख़ास तौर पर इन बाबरकत दिनों में माफ़ कर दीजिए, दरगुजर कर दीजिए। उनकी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, अपना बड़ापन दिखा के माफ़ कर दीजिए। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि माफ़ करने वाला बड़ा होता है, तो हमें दरगुजर करने का रुतबा पता चलता है कि कितना ऊंचा और कितना बड़ा आला मकाम है। मखसूसन मैंने कहा इन ख़ास दिनों में, इन बाबरकत दिनों में, जब सब हज कर रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं, तो हम भी अपने दिलों को पाक कर दें, साफ़ कर दें तमाम कीने से, तमाम बुख्स से जो हमारे दिल में भरा पड़ा है। जी नाज़रीन, साथ मिलकर देखते हैं खूबसूरत सा वीडियो क्लिप जो कुम से हमारे साथियों ने हमारे लिए तैयार किया, और फिर आपकी खिदमत में डॉक्टर ज़ैनब मेदी के साथ हाज़िर होंगे। जी नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं दोबारा अपने प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में। उम्मीदवार हैं कि आपको शहर कुम के जो मुकद्दस मनाजर और ज़ियारती मनाजर हैं वो पसंद आए होंगे। हमेशा की तरह हमारी यही दुआ रहेगी कि खुदा ताला हम सबको ये तौफीक और हमारी किस्मत में ज़रूर ये दिन लाए कि हम ऐसे खूबसूरत खूबसूरत ज़ियारती मनाजर अपनी आँखों से देख सकें और ज़ियारत कर सकें। वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं डॉक्टर ज़ैनब मेदी के पास। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसे हैं आप?
बस खैरियत,
बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ यहाँ पे। डॉक्टर साहिबा, मौजू पिछले हफ्ते हमारा चल रहा था कि बच्चों को आदत है जो भी देख लिया उठा के मुंह में डालने की, बड़ी बड़ा मसला है। मैं एक माँ हूँ, मुझे पता है इस बारे में। डॉक्टर साहिबा, ये अगर बच्चे ने फ़र्ज़ कीजिए एक चीज़ खा ली, उठा ली, मुंह में डाल दी, नहीं बताना चाह रहा है, या माँ बाप की डर से कि थप्पड़ लग जाए सर पे, तो नहीं बताना चाह रहा, क्या किया जाए, कैसे निकाला जाए इसके मुंह से?
ये पिछली मरतबा भी जिस बारे में बात की थी, क्योंकि आप कह लें 6 महीने से ऊपर के बच्चे और 3 साल के नीचे तक
जो बच्चे क्रॉल करना शुरू होते हैं उससे 3 साल तक
जी ज़्यादातर ऐसे बच्चों में पेश आती हैं ये बातें। तो जो जिस तरह से आपने कहा कि आप भी माएँ, ज़्यादातर जो मसला पेश आता है अक्सरन वो यही होता है कि क्या किया जाए, यानी किस तरह से समझे इंसान कि बच्चे ने खाया या नहीं खाया। तो जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए तो खैर ये कहने वाली बात है, जिस तरह के पिछले हफ्ते भी हम लोगों ने बात की थी, कि जितना ज़्यादा माँ बाप जो हैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी बच्चे के साथ जो है वो दोस्त बनने की कोशिश करें, और उसके तरबियत जब आप कर रहे हैं तो इस तरह से आप पेश जाएँ आगे की तरफ, कि बच्चा वजह इसके कि आपके डर से आपको बहुत सी चीज़ें
ना
ना
बताए
बताएं,
सही।
दरवाक़े वो आपके ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा करे कि आसानी से कोई अगर गलत काम जो उसकी नज़र में गलत
बिल्कुल
है अगर उसने किया है तो वो आपको बता सके।
ठीक
और ये एक तरबियती मसला है यानी, और इस पे आप कह लें शुरू से यानी पहले दिन से काम करने की
काम करना
ज़रूरत है
बिल्कुल सही
कि बच्चा जब 3 साल का तो हो रहा है तो वो डरे ना आपसे कुछ भी बताने को,
ठीक
आपसे बेखौफ हो के बता सके कि मैंने ये फला काम जो है वो गलत
सही ये कही
किया।
है
छोटे बच्चों में आप कह लें 6 महीने से ऊपर के बारे में जब आप बात करें तो यानी 1 साल से नीचे तक की जो बोल
ठीक
भी नहीं पाते हैं,
बिल्कुल
ज़्यादातर जो मसला पेश आता है वो इस तरह के बच्चों के साथ पेश
सही
आता है क्योंकि वो कह भी नहीं सकता, कहना चाहे भी तो नहीं
ठीक।
कह सकता। यहाँ
तो
पे इन
उसकी कोई हालत या रिएक्शन हम
जी
देख सकते हैं यानी या
जी
नहीं या कोई और तरीका है समझने
जैसे
का
आप देख लें अगर बच्चे हैं जो दूध पीते हुए हैं यानी
ठीक
जो टर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं दूध पीने वाले जो बच्चे होते
जी
हैं उनके अंदर ये देखा जाता है कि माँ कैसे समझे अब आपके बच्चे ने खुदा ना खास्ता कुछ उठा के खा लिया।
सॉरी
एक तो वो दूध पीने से मना करेगा यानी अगर आप कह लें माएँ क्योंकि ज़्यादातर तवज्जो देती हैं अपने बच्चों पर तो उन्हें ध्यान होता है कि भाई मेरा बच्चा हर 2 घंटे में एक बार जो है वो
दूध
दूध
पीता
पीता
है
था,
सही
एक बोतल आधी बोतल एक
सही
गिलास। आप देखेंगे कि टाइम के साथ साथ जैसे आज उसने फीड नहीं किया एकदम
ठीक
यानी बिल्कुल नहीं पिया, फिर या कम पिया, या
अच्छा
फिर आप देख रहे हैं कि प्रोग्रेसिव तौर पे यानी आज अगर 2 बार पीता था तो 1 बार पिया और कल से बिल्कुल यानी आप जब भी
नहीं ले
उसको
रहा
दूध
और
दे रहे हैं वो दूध नहीं ले रहा है।
अच्छा
तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं यानी ये इस बात का शक करें ज़रूर,
ठीक
इसलिए ये बताया जा रहा है कि हो सकता है इसके गले में कुछ फंसा और वो कह नहीं पा रहा।
अच्छा
इसके अलावा जो चीज़ होती है आप देख ले खांसना यानी खांसी बच्चों में आती है पेश आती है क्योंकि एक तो जो आप कह लें एसिड होता है बच्चे के मैदे का वो
अच्छा
क्योंकि वहाँ पे जो स्फिंक्टर होता है यानी जो जगह होती है उसको रोक के रखने वाली वो अभी लूज़ होती है तो
सही
खांसी की शिकायत आती है बच्चों में या फिर
अच्छा
आप कह लें कि उल्टी कर दी बच्चे ने बिला फासला
वो एक कहते हैं हरूफ इस्तेमाल ठसका सा लगता है
जी
बच्चे
जी
को
ठसका सा
आउटसाइड
जैसे लगता
ठीक
है या
ठीक
बच्चा जो है दूध पलटा देता है पीने
अच्छा
के बाद, तो या ये सारी चीज़ें अगर आपको लगता है कि नॉर्मल से ज़्यादा पेश आ रही हैं
ठीक
या बच्चा बैठा हुआ है या बच्चा लेटा हुआ और आपको ये लग रहा है कि नहीं ऐसी खांसी आती ही चली जा रही है उसे, वो जो
ठीक
खिस
ठीक
खिस की सदा जो होती है
सही
आवाज़ जो
सही
होती है वो ऐसी आती चली जा रही है, एक तो ये साइन है।
ठीक
इसके अलावा खुदा ना खास्ता अगर आप देख लें कि कोई ऐसी चीज़ है जो ख़तरनाक यानी इतनी ज़्यादा नीचे तक पहुँच चुकी है कि खुदा ना खास्ता ऑब्स्ट्रक्शन यानी आप कह लें आपकी जो आते हैं आपकी जो पेट
ठीक
का निज़ाम है उसमें जो है वो एक रुकावट सी आ गई है
यानी
बच्चे
बच्चा आप
पे,
इस तरह बोले जो वॉशरूम
जी
जा रहा है उसमें रुकावट आ रही है उसको
रुकावट आ
ठीक
गई
ठीक
है उसको, तो एक तो इस बात से आप समझ सकते हैं और किस तरह से बच्चे को पेट दर्द होगा। अच्छा
हाँ
मामूलन अगर आपने भी देखा हो तो
सही है
छोटे बच्चों में पेट दर्द जो होता है वो ग्राइप वाटर से जो
सही
है
हल कर दिया जाता
वो
है
हल कर दिया जाता
बिल्कुल
है, कहते हैं कि नहीं जी ग्राइप पिला दिया और क्योंकि गैस की प्रॉब्लम होती
सही
है
बिल्कुल
मामूलन तो वो बेहतर हो जाती है।
ठीक
लेकिन अगर आपको ये एहसास होता है कि बच्चे को आपने ग्राइप भी पिला दिया और इस मरतबा जो है वो फ़ायदा नहीं हो रहा है, छोटा
ठीक
बच्चा है बोल भी नहीं सकता, तो
सही
यहाँ पे ज़रूर आप इस बारे में सोचें कि हो सकता
होता है
है कि
कुछ
ऐसा कोई
यानी
मसला
इम्कानात
पे
हैं इस चीज़ के ठीक
इम्कान है इस बात के और यहाँ पे शक जो है वो इस बात का यहाँ पे हो
सही है।
यहाँ तक आपको पहुँचाए कि आप फौरन डॉक्टर के पास ले लें।
डॉक्टर के बात से मुझे याद आया
जी
कि पुराने ज़माने की ख़वातीन अक्सर मैंने देखा था कि बच्चे को
जी
उल्टा करके दो थपकी पीछे से लगाती थी, ये बात किस हद तक सही है, करना चाहिए या नहीं
ये
हमें इस
आप
तरह
देख लें एक तो सबसे पहले इसको लॉजिकल तौर पे यानी हल
ठीक
किया जाए क्योंकि नाज़रीन के लिए भी ज़रूर सवाल रहा
जी
होगा, सांस की नली और खाने की नली और आपका मुंह यानी ये जो रास्ता है ये एक रोड की तरह नहीं है कि आपने पीछे मारा और आगे गिर जाएगा जो
जी
भी है, यानी एक लॉन्ग पाइप नहीं है,
जी
खुदा ने
बिल्कुल
यहाँ पे कई जगह पे जो है फुल बैनर ये चीज़ लगाए हुए हैं फुल स्टॉप लगाए हुए
फुल
हैं
स्टॉप बोल रहे हैं वो रेड
जी,
लाइट्स लाल
रेड
बटन आप
लाइट्स
बोल बिल्कुल
लगाई हुई हैं यानी
सही
एक रेड लाइट आपके मैदे के ऊपर है
ठीक
ऊपर वाले एरिया में जहाँ से
सही
खाना जा रहा है
ठीक
अंदर, एक रेड लाइट आपके खुद मैदे के नीचे हिस्से में यानी स्टमक के बाद जब आप इंटेस्टाइन या आंतों की तरफ जाते हैं
जी
एक रेड लाइट जो है वो वहाँ पे लगी
सही
हुई है।
सही
उसके अलावा खुद आपकी जो खाने की नली है
जी
यहाँ पे भी 2 जगह जो है आपके लिए रेड लाइटें बनी हुई है,
सही
एक ऊपर की तरफ और एक
नीचे की
नीचे
तरफ
मैदे से जुड़ने से पहले।
अच्छा
तो यहाँ पे जो चीज़ आप मुंह में डालेंगे ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि नाज़रीन के लिए शायद वाकई सवाल हो
जी
क्योंकि लोग
इत्तेफाक
करते हैं
हमसे
ये
किसी ने
काम।
सवाल एजाज हुसैन साहब
जी
ने भी मेरे ख्याल से सवाल पूछा था पिछले
जी
हफ्ते जी
तो यहाँ पे आपने जो निज़ाम चलता है नॉर्मल तौर पे
जी
वो ये कि आपने जब खाना खाया तो यहाँ से ईसोफेगस यानी आपकी खाने की नली से
सही
वो पास होगा और उसके बाद एंटर होगा मैदे के अंदर,
अच्छा
एक प्रोसेस है ये,
सही
और ख़ुद ईसोफेगस की जो मसल होती है, जो उसका गोश्त होता है, उसके अंदर ऐसी हरकत खुदा ने करार दी है कि वो धीरे धीरे खाने को पास करके मेरे तक पहुंचाता है।
अच्छा
तो यहाँ पे बच्चे को उल्टा कर देना, अगर यहीं कहीं पहले ही फंसा हुआ है जो खाना, वो शायद
ठीक
गिर सके, लेकिन ये काम बिल्कुल ना करें आप,
अच्छा
क्योंकि छोटा बच्चा है और उल्टा करके और ये काम करना ये बिल्कुल ना करें
सही
जिस हद तक हो
जी
सकता है। और उसकी लॉजिकल वजह भी जो है वो ये है कि खाना जब पास करता है तो एक रेड लाइट से पास करेगा, दूसरी से पास करेगा, तीसरी और चौथी, और फिर आंतों
कुछ
के
हिस्सों
अंदर
में
जो है
तकसीम है इस तरह
तकसीम होती
सही
है चीज़, यानी स्टेप बाय स्टेप अल्लाह का निज़ाम जो है वो यही है कि आप धीरे धीरे करके सारी चीज़ें जो है वो नीचे अपनी जगह तक पहुँचेगी।
सही
तो ये डिपेंड करता है इस बात पे कि 12 घंटे हो चुके हैं, 24 घंटे हो
अच्छा
चुके हैं, या 48 घंटे हो चुके हैं, खाना कहाँ तक पहुँच गई है वो चीज़ जो बच्चे ने
सही
आपके जो है वो उठा के खा लिए,
ठीक
उसी के हिसाब से भी जो है जो डॉक्टर वो जो है वो काम करता है अपना।
बिल्कुल सही
ये बिल्कुल इस तरह का नहीं कि आपने बच्चे को उल्टाए और दो मारा पीछे से और दास्तान ख़त्म हो गई और जहाँ तक हो सके ये
सही
काम ना करें।
जी चलें, ये
जी
अपनी नाज़रीन को हम बताते चलें कि बहुत इस बात का आप ख्याल रखिए, बिल्कुल इस तरह की हरकत ना कीजिएगा, उल्टा
जी
मारने वाली थपकियाँ, क्योंकि दादियाँ और नानियाँ ये काम अक्सर करती हैं। अगर मिसाल के तौर पे एक
जी
छोटी सी चीज़ बैटरी हो गई
जी
जो
जी
घड़ी में लगती है, सबसे छोटी चीज़
जी
फिलहाल
जी
नज़र में वही आती है, बच्चे ने अगर उसको निगल लिया उसके लिए
ये
क्या
बहुत
स्टेप?
अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि बैटरी हो गई और
डॉक्टर साहब मेरे हमें कहा जा रहा है
जी
बहुत माजरत के साथ
जी
कि हमें जाके एक खूबसूरत सा वीडियो क्लिप
जी
देखना
जी
है,
जरूर
नाजरीन साथ मिलकर देखते हैं खूबसूरत सा वीडियो क्लिप और फिर मेरे इस सवाल का जवाब डॉक्टर साहिबा से लेते हैं। जी नाज़रीन, आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं, उम्मीदवार हैं कि ये खूबसूरत मनाजर और खूबसूरत मौसीकी आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। फ़ौरन चलते हैं मौजू के पास और मेरे उस सवाल का जवाब डॉक्टर साहिबा से लेते हैं। कि डॉक्टर साहिबा, सवाल मैं फिर से
जी
बोलूँगा अगर आज ने ना सुना हो
जी
या जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, छोटी बैटरी घड़ी की अगर बच्चों ने निगल ली हो तो उस सिलसिले में क्या किया जाए?
आप देख लें, बैटरी हो गई और दूसरे जितने भी शार्प चीज़ें हो सकती हैं,
अच्छा
यानी खुदा ना खास्ता लकड़ी का कोई ऐसा टुकड़ा,
टुकड़ा सभी
या आप देख लें किसी भी चाकू का तेज यानी छोटा टुकड़ा जो था वो उसके
या
आस
वो
में, क्योंकि
ब्लेड ब्लेड जो
ब्लेड
भी
हो गया
बिल्कुल
खुदा
छोटी
ना
सी।
खास्ता, या बाकी ऐसी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शार्प और ख़तरनाक चीज़ें होती हैं एक डॉक्टर की नज़र से,
सही
बैटरी मखसूसन, क्योंकि खुद आपके बदन के अंदर भी बहुत सारे चार्ज होते हैं और उसके अलावा खुद बैटरी भी जो है वो एक चार्जिंग मटेरियल है।
सही
तो यहाँ पे सबसे पहले कोई भी बच्चा जब आता है और उसको ये पता है क्योंकि बैटरी खाई है, तो वो खुदा के बताएगा कि भाई मैंने बैटरी खा
सही
ली है
बिल्कुल
ना, थप्पड़ वप्पड़ खाने के बाद जो है वो अस्पताल बिलाखिर लाया जाएगा
बिल्कुल
बेचारा
सही
बच्चा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख लें कि एंडोस्कोपी की जाती है,
अच्छा
और उस तरह की एंडोस्कोपी से मुराद ये नहीं है, वो एंडोस्कोपी जो मेदे के लिए होती है वो एंडोस्कोपी नहीं होती है यहाँ
ठीक
पे। यहाँ पे आप कह लें आप जा रहे हैं उस बॉडी को, फॉरेन बॉडी को निकालने के लिए,
अच्छा
उस चीज़ को निकालने के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि हर जगह पे यानी चार तरह की रेड लाइट जो है वो लगी
जी
हुई है, आप पहली से पास कर गए हैं, अभी तीन और हैं
सभी
ताकि कि वो चीज़ जो है जा सके नीचे आपके इंटेस्टाइन में, और बाद में आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो निकल जाएगी यानी
सही
डेफिकेशन
बिल्कुल
के रास्ते से। यहाँ पे इस पे बात पे डिपेंड करता है कि जो बैटरी बच्चे ने खाई है खुदा ना खास्ता, या जो भी शार्प चीज़ है,
जी
अक्सर आप देख लें बहुत ज़्यादा बैटरी के अलावा एक ये जो डाइस होता है जो लूडो नहीं
जी
खेलते
जी
हैं
बच्चे
बच्चे,
जी जी
बचपन में हम लोग भी
सही
खेलते थे, उसका
बिल्कुल,
डाइस भी अक्सर जो बच्चे हैं बहुत पसंद करते
अरे वो
हैं खेल,
चूसना उनको बड़ा अच्छा
जी
लगता है
वो
पता
भी
नहीं
चला
क्यों।
जाता है अंदर,
सही
यानी तो
बिल्कुल
ज़्यादातर केसेस यहाँ पे खुदा का शुक्र है कि डाइस के देखे जाते हैं ना
सही
बैटरी के। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एंडोस्कोपी होती है
ठीक
और बगैर यानी उतना बेहोश नहीं करेंगे बच्चे को, क्योंकि उसकी होशियारी जो है उसकी ज़रूरत है
अच्छा
आपको, तो सेडेशन के साथ, हल्की सी सेडेशन के साथ कि बच्चे को दर्द ना आए, एंडोस्कोपी की जाती है।
ठीक
बच्चों के डॉक्टर ये काम करते हैं, एक नॉर्मल जनरल फिजिशियन ये काम नहीं कर सकता। ये जुमला मैंने इसलिए बोला कि माँ बाप को इस बात का
जानकारी
ख्याल
हो जाए
रहे,
बिल्कुल ठीक,
आप ले जाएंगे एक डॉक्टर के पास जो बच्चों का डॉक्टर हो,
बच्चों का
बच्चों का
स्पेशलिस्ट हो
डॉक्टर हो और पेट का स्पेशलिस्ट हो, यानी
अच्छा
आप कह लें GI का स्पेशलिस्ट
अच्छा
हो,
ठीक
आप ले जाएंगे वहाँ पे। उसके बाद जो है एंडोस्कोपी एक्सप्लोरेटिव की जाती है, यानी क्या किया जाएगा,
सही
एंडोस्कोपी के पाइप में जो कैमरा होता है उसका
सही
यूज़ करके सबसे पहला काम जो किया जाएगा, डिपेंड करते हुए कि कितने घंटे उस बैटरी के खाने से गुजर
गुजर
चुके
गए
हैं,
अच्छा ठीक
देखा जाएगा कि अगर बैटरी को जो है आप खाने की नली के अंदर ढूंढ पाते हैं, यानी जहाँ तक आपको इजाज़त है जाने की,
सही
अगर उसमें आप ढूंढ पाते हैं तो एक कहालत जैसे आप कह लें बास्केट टाइप की चीज़ होती है,
ठीक
बताती भी चलूँ क्योंकि शायद नाज़रीन के लिए ये बात जो है वो जाली हो यानी
सही
इंटरेस्टिंग हो शायद
सही
उनके लिए। तो उस जाली का इस्तेमाल करते हुए जो है ये कोशिश की जाती है एंडोस्कोपी के साथ कि
जी
उसको निकाला जाए,
अच्छा
यानी एक तरह से अगर उस
उस मरहले
ऊपरी,
पे है।
जी अगर
ठीक
उस ऊपरी हिस्से में है
ठीक
और आपका हाथ जो है वो पहुंच
पहुंच
सकता
सकता है
है
उस
बगैर
तक।
इसके कि आप कोई इजाफा कोशिश
ठीक
करें, अगर यहाँ निकल आता है, डाइस है, बैटरी है, तो कोई
तो सही
मसला
है,
नहीं, खुदा का शुक्रिया, यानी हल हो
एक
जाता है
आसान
मसला
मरहले से गुजर के
आसान
निकला।
मरहले से, यानी बगैर किसी खतर के।
ठीक
इसके अलावा अगर जो है बैटरी पास कर जाती है नीचे की तरफ, या जो शार्प ऑब्जेक्ट है, कि यहाँ ज़्यादातर ख़तरा जो हम लोगों को होता है वो शार्प ऑब्जेक्ट से होता है,
सही,
खुदा ना खास्ता, यानी आप देख लें अगर डाइस हो तो फिर भी प्लास्टिक है, या
प्लास्टिक
बच्चे
और कोई
अक्सरन,
कोई तेज कोने नहीं है
जी
इसके।
तेज
ठीक
कोने नहीं है, और दूसरा अक्सरन जो बच्चों में ये भी देखा जाता है वो ये कि बच्चे का दांत टूटता है और बच्चे खा लेते हैं, ये
है
भी कई केसेस देखे गए
सही।
हैं, यानी तो दांत भी अगर हो तो बचपन से खैर हम लोगों को डराया जाता था कि दांत का पेड़ निकल आएगा पेट के
सही जी
अंदर अगर
बिल्कुल।
दांत खाओगे तो, उसके
ठीक
अलावा खैर अब ये बच्चे ना सुने,
ठीक
दांत का पेड़ तो खैर नहीं निकलता है लेकिन वो
बिल्कुल
पास कर जाता है, लेकिन
अच्छा
बैटरी और शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ हमेशा जो है वो डॉक्टर भी डरता है और माँ बाप भी।
अच्छा
तो यहाँ पे जो काम किया जाता है सबसे पहले, कॉइन्स भी बहुत खाते हैं
जी
बच्चे,
सिक्के ठीक
सिक्के का इस्तेमाल ज़्यादा, तो यहाँ पे आप एक्सरे लेते हैं दो तरह का,
अच्छा
कॉइन्स के बारे में या बैटरी के बारे में,
सही
दोनों
है।
पोजीशन में पहले आप एंडोस्कोपी से देखेंगे, उसके बाद एक्सरे लिया जाता है, इसलिए कि जो दो डायमेंशंस में आप एक्सरे लेंगे उसके हिसाब से जो आपको ये पता लगता है कि, क्योंकि अक्सर बच्चे बताते भी नहीं हैं, आप एक गोल चीज़ देख रहे हैं एक्सरे के अंदर जो बैटरी भी हो सकती है, सिक्का
सही
भी हो सकता है और कोई तीसरी चीज़ भी हो सकती है,
अच्छा
कंचों का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और
ठीक
कंचे भी अक्सर औकात अगर आप देखें तो बच्चे खा लेते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल
यहाँ पे फिर कोशिश की जाती है कि एक तरह से ये गेस करने की ये जो बच्चे ने खाया है वो क्या है
क्या
और
चीज
जो
है।
नहीं पता है
ठीक
आपको, फिर अगर बैटरी जैसी चीज़ हो, कॉइन जैसी चीज़ हो जो
सही
पास कर गई है, यानी आपके ईसोफेगस से या आपकी खाने की नली से जो है वो नीचे की तरफ उतर गई है, तो
बिल्कुल
यहाँ पे फिर मैदे में जाएगी और
मेरे
मैदे के स्टमक के बाद से जो आपके इंटेस्टाइन में जाएगी, आपकी आंतों की तरफ
ठीक
जाएगी। तो यहाँ पे जो काम किया जाता है वो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट उसको कहते हैं, यानी क्या, यानी ये कि आप क्योंकि अब एंडोस्कोपी के थ्रू जो है उस चीज़ को निकाल नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे उन सारी चीज़ों का जो रेड फ्लैग हैं, यानी जो ख़तरनाक चीज़ें
ठीक
पेश आ सकती हैं,
सही
ये सारी चीज़ें माँ बाप के लिए बताई जाएंगी, और उसके बाद उस सिम्टम्स पे
जी
डिपेंड करते हुए, डेफिकेशन पे, बच्चे की, बच्चे के पेट ने काम किया या नहीं किया,
हालत जो
बाथरूम
बच्चे की
गया,
है
जी गया
बिल्कुल
बाथरूम या नहीं गया, और उसका जनरल अपीयरेंस, इसके हिसाब से जो है आप फॉलो करेंगे। हो सकता है यहाँ पे ज़रूरत हो कि आप हर 12 घंटे में पहले एक ग्राफी लें, एक एक्सरे
अच्छा
लें, उसके बाद हर एक दिन पे, उसके बाद शायद हर 2 दिन में एक बार,
अच्छा
डिपेंड करते हुए, लेकिन फिर वो किस्सा आ जाता है यहाँ पे कि रोज़ बच्चा मार खाएगा, क्योंकि
अच्छा
तकरीबन रोज़ जो है माँ बाप मजबूर हैं उसको डॉक्टर तक ले जाने
डॉक्टर ले
के लिए।
जाना, और
जी
वो एक होता है ना खौफ,
जी
खर्चा अलग खौफ अलग, तो
और
फिर
खौफ
एक
अलग,
तो
वो भी
पढ़ना
है।
चाहिए।
जी
ठीक है
तो
जी,
जी
अगर इजाज़त है तो साथ मिलकर देखते हैं खूबसूरत सा
जी
वीडियो क्लिप, एक खूबसूरत सी मौसीकी, और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ, गुफ्तगू को जारी रखते हैं। जी नाज़रीन, दोबारा आपको खुश आमदीद कहते हैं और चलते हैं डॉक्टर साहिबा की खिदमत में और अपनी गुफ्तगू जारी करते हैं। जी
जी
डॉक्टर साहिबा, बच्चों में पेट दर्द वगैरह, यानी इस चीज़ से होना, तशखीस देना कि उसने क्या मतलब खाया है, या यानी आपने बोला टाइम गुजर गया है, माँ बाप घर में इसका कैसे वो करें। यहाँ पर बताया कि
जी
हो गया, इसे इसने वॉशरूम नहीं किया, ये वो,
जी
अगर ये सब चीज़ें भी नॉर्मल है फिर भी इसने कुछ खाया, और कोई तरीके हैं मालूम करने के
एक तो
या।
सबसे ज़्यादा सवाल जो पेश आता है माँ बाप के लिए वो ये होता है कि बच्चे ने अब बैटरी खा ली है, फला चीज़ खा ली है, तो इसको खाना दें खाने के लिए या नहीं दें।
अच्छा ये भी है एक
जी तो यहाँ पे सबसे पहले जितनी भी लिक्विड चीज़ें आपके डॉक्टर ने बताई है, क्योंकि ये डिपेंड करता है उस चीज़ पे जो आपके बच्चे ने इस्तेमाल की, उसने खाई हुई है,
सही
तो जनरलाइज तौर पर, यानी आप कहते हुए अगर चले प्रोग्राम के लिए, तो ये है कि लिक्विड्स ज़्यादा दिए जाएंगे,
अच्छा
यानी ज़्यादा सॉलिड और वो गोश्त वाली चीज़ों को
ना
खाने से
दें।
मना किया जाएगा
अच्छा
फ़िलहाल, यानी इस तरह से
ठीक।
सूप और बाकी सारी चीज़ों को खा के जो है बच्चा, क्यों? क्योंकि आपकी जो मोशन है यानी जो हरकत है आपकी इंटेस्टाइन की, आपकी आंतों की, वो आसानी से हो
अच्छा
सके,
ठीक है।
इसलिए कहा जाता है। और यहाँ पे वो रेड फ्लैग्स जिनके बारे में
अच्छा
आपने भी
बिल्कुल
सवाल किया, वो ये थे कि अगर आपको कहा गया कि आप फॉलो करेंगे, बच्चे को ले जाएंगे और लाएंगे,
ठीक
तो खुदा ना खास्ता, यानी ये सारी चीज़ें माँ बाप के लिए भी कही जाएंगी कि अगर आपने देखा कि एक बार की पेट का दर्द जो है वो इसका शदीद हो गया,
ठीक
खुदा ना खास्ता आपने देखा कहीं से खून की उल्टी इसको आ रही है, या इसको
सही
टॉयलेट में जो है वो खून दिखाई दिया
अच्छा
है, इसके अलावा जो है उल्टियाँ आनी शुरू हो गई हैं एक के
सही
पीछे
है
एक और जो बंद भी नहीं हो रही है,
अच्छा।
या फिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीवर या बुखार,
बुखार का भी इसमें
बुखार का भी
अच्छा
इसमें चीज़ है। ये सारी अलामतें इस बात का निशान है कि खुदा ना खास्ता या कई कोई जो ऑर्गन है बॉडी का वो फट गया है, या
राइट
फिर आप कह लें किसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो पेश आ गई है, तो यहाँ पे फौरी तौर पर किसी भी टाइम अगर ये चीज़ें पेश
सही
आती हैं,
यानी
आप
बस
ठीक है डॉक्टर ने आपसे कहा है आप कल सुबह आएँ, लेकिन अगर ये चार पांच चीज़ें जो कहीं कहीं पेश आती
हाँ
हैं तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास ले
तो
जाएं
यानी
बच्चे
यानी
को।
हमारे को चीख चीख बता रही है अलामत है कि आपको
जी
फौरन वक्त सारा दिया
फ़ौरन
मैं
ले
डॉक्टर
जाएं। और लेकिन
जी
बस यहाँ पे एक नुकता और मैं कहती
जी
चलूँ, इसमें डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, यानी
जी
इतना ज़्यादा बंदा इसलिए यहाँ पे कहता है बताता है कि कोई केस मिस ना हो, लेकिन अगर आप यानी जाएं और देखें कि स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू
जी
से कितने परसेंट जो बच्चे हैं वो एक्चुअली जर्राही या सर्जरी की तरफ जाते हैं, तो वो 1% से नीचे होता है, तो माँ
चले
बाप डरे ना यहाँ पे,
चले
ज़्यादातर पास हो जाती हैं
चले
चीज़ें।
अल्लाह का
जी
शुक्र है कि इतना ही नहीं वो बात नहीं
जी
है। डॉक्टर साहब हमारा मौजू हफ्ते का है ईसार और दरगुजर के
जी
बारे में, बहुत कूटा चूंकि वक्त महदूद है, आपका क्या नज़र है इस बारे में, आपकी क्या
जी
राय
क्योंकि
है?
ईद की वजह से जो है आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक,
जी
अच्छी चीज़ें सभी को करना चाहिए,
बिल्कुल
इसलिए कि बंदा छोटी छोटी गुज़श्त जो इंसान एक दूसरे के लिए करता है उसी से फिर जो है आप एक छोटा काम करेंगे और वो एक बहुत बड़े और अच्छे काम में तब्दील होता है,
जी
क्योंकि आप एक चेन रिएक्शन को एक्टिवेट
जी
करते हैं।
जी डॉक्टर साहब बहुत
जी
शुक्रिया, तशरीफ लाएँ, बहुत
बहुत
मुफीद
बहुत
गुफ्तगू
शुक्रिया
रही।
आपका।
जी नाजरीन चलते हैं देखते हैं खूबसूरत सा तराना और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं जाइएगा मत। जी नाजरीन दोबारा आपको खुश आमदीद कहते हैं, उम्मीदवार हैं कि आपको मजीद अख्शाबी साहब की आवाज़ में ये खूबसूरत सा तराना बहुत बहुत पसंद आया होगा। नाजरीन मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि रोज़ अरफा है, रोज़ अरफा जो बोलते हैं बख्शिशों का दिन है, जितने रूठे हुए हैं उनको मना लीजिए, खुदा भी हम सबको बख्शेगा। अब आपको तो पता है खुदा वैसे तो सबसे बड़ा हमारा जो बख्शांदा जो हमको बख्शिश देता है हर चीज़ में, तो हमको भी कोशिश करनी चाहिए कि हम सब चीज़ों को छोटी छोटी बातों को दरगुजर कीजिए, ख़ास तौर पे ऐसे ख़ास दिनों में। नाजन हमें बताया जा रहा है कि हमारे साथ एक बहुत मोहतरम कॉलर हमारे साथ हैं, हसनैन साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम
वालेकुम अस्सलाम
हसनैन
वरहमतुल्लाह,
साहब, बहुत बहुत खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का।
बहुत शुक्रिया
जी हसनैन साहब, आपको ही पता है कि रोज़ अरफा है और हमें कहा गया है कि आपने कुछ ख़ास हमारे लिए तैयार किया है।
यही था कि अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बहुत अजीम दिन है,
जी
रोज़े मारफत खुदावंद मुताल है,
जी बेशक,
लिहाजा मैं चाह रहा था कि कुछ हिस्सा इस दुआए अरफा का जो एक अजीम दुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की है
जी
उसका चंद एक हिस्सा आपके आपके सामने पेश
जरूर
करूँ।
जरूर हमें बहुत खुशी होगी जरूर।
اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلني أخشى كأني أراك وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك واخر لي في قضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت اللهم اجعل غناي في نفسي واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والنور
نسيب والبصيرة في ديني ومتعني بجوارحي واجعل سمعي وبصري الوارثين مني وانصرني على من ظلمني وأرني فيه ساري ومآربي وأقر بذلك عيني اللهم اكشف كربتي واستر عورتي واغفر لي خطيئتي واخسأ شيطاني وفك رياني واجعل لي يا إلهي الدرجة العليا في الآخرة والأولى اللهم لك الحمد كما خلقتني فجعلتني سميعا بصيرا اللهم صل على محمد وآل محمد.
جی حسنین صاحب، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، میرے پاس کہنے کے لیے لفظ ہی نہیں ہے. بہت خوبصورت، بہت بہت خوبصورت. آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟
میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت عظیم دن ہے، روز معرفت خداوند متعال ہے، لہٰذا یہ دن چند ایک رسومات میں نہ گزر جائیں بلکہ یہ دعائے عرفہ خود اللہ کی معرفت کی شناسائی کے لیے بہت بہترین ذریعہ امام حسین ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، اور اس دن کو انسان کوشش کرے کہ خداوند متعال سے قریب ہونے کی کوشش کرے. اور امام حسین کا بہت بہترین جملہ اس دعا کا ہے، اس سے میں بات اختتام کروں گا کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھویا اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پایا. اس جملے کو انسان اگر سمجھ جائے اور اپنی زندگی کو اسی جملے کے تحت سوار دے تو انسان کی زندگی میں فقط کامیابی اور اس کی قدم چومیں گی.
بے شک بے شک، بہت خوبصورت بہت خوبصورت. میرے خیال سے آپ نے ناظرین کا پورا دن اس خوبصورت دعا کے ساتھ یعنی میرے پاس کہنے کے لیے لفظ نہیں آپ نے بنا دیا ہوگا. بہت بہت شکریہ حسن صاحب فون کرنے کا.
دعا میں یاد رکھیے گا.
جی ضرور، آپ بھی دعا میں یاد رکھیے گا. جی ناظرین، چلتے ہیں، لیتے ایک چھوٹا سا بریک اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، خوش آمدید دوبارہ کہتے ہیں آپ کو آپ کے خوبصورت سے پروگرام صبح زندگی میں. میں چلتی ہوں اس طرف، یعنی ایل سی ڈی کی طرف، اور کچھ خبریں جو میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں اس میں سے پہلی خبر ہماری یہ ہے، کیونکہ سردیوں کا موسم نزدیک آ رہا ہے، خزاں کا موسم ہے، اور اکثر شکایت رہتی ہے فلو کی، نزلہ زکام جو سب کو پیش آتا ہے، چھوٹے بچوں میں، بڑوں میں. کچھ ایسی کام جو ہم گھر میں کر سکتے ہیں جس سے ہم نزلہ زکام یا فلو کے بچاؤ، یعنی جو اس کو پھیلانے سے بچ سکتے ہیں. جی جیسے دیکھنے خوبصورت سی بچی کو، بیچاری کو بخار ہے اور بہت پیاری تصویر ہے، مجھے بہت پسند ہے اس لیے میں یہ لے کے آئی آپ کے لیے. سب سے پہلا جو ہمارے پاس کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ فلو کی، انفلوئنزا کی کچھ خاص قسم کی ویکسینیشنز آتی ہیں، آپ وہ خاص قسم کے انجیکشنز یا ویکسینیشنز، ٹیکے کہتے ہیں ان کو عام زبان میں، آپ وہ ٹیکے لگا سکتے ہیں جس سے آپ فلو کی پھیلاؤ سے خاص یعنی کسی حد تک بچ سکتے ہیں. اور ایک بات ناظرین خیال رکھے گا، کیونکہ فلو کے جو جراثیم ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، تو ہر سال یہ انجیکشنز بھی بدلتے رہتے ہیں، تو آپ کوشش کیجئے کہ ہر سال یعنی جو ہے انجیکشنز لگوائیں تاکہ آپ فلو سے کافی حد تک یعنی بچ سکیں. جی دوسرا سب سے بڑا اہم مسئلہ ہمارے پاس جو ہے، جس پہ ہم بالکل دھیان نہیں دیتے، ہاتھ دھونا. کیونکہ ہمارے ہاتھ ایسی چیز ہیں جو ہم ہر چیز پر لگاتے ہیں اور ہر جگہ جو ہم کھاتے ہیں ہمارے منہ میں وہ جراثیم جا رہے ہیں، کپڑے پہننے میں، گاڑی ڈرائیو کرنے میں، ٹیبل پہ، ہر جگہ وہ ہاتھ ہمارے لگ رہے ہیں. تو جراثیم جو ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اگر ہم اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح کسی اچھے اینٹی بیکٹیریل صابن سے یا ہینڈ واش سے دھوئیں تو وہ ہمارے کو جراثیم جو فلو کے ہیں ان سے کافی حد تک بچاتے ہیں. اگر امکان ہے کہ آپ کے پاس پانی یا صابن موجود نہ ہو تو ہینڈ سینیٹائزرز آتے ہیں، خاص قسم کے لکوڈز ہوتے ہیں جو جراثیم سے بچاؤ کے لیے ہوتے ہیں، ان کو اپنے ہاتھوں پہ اچھی طرح مل لیجیے، پہلے اچھی طرح یعنی ہاتھوں انگلیوں کے بیچ میں تاکہ جراثیم کے پھیلاؤ سے ہم کافی بچ سکیں. جی پھر ہمارے پاس جو ہے مسئلہ, اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آپ کو نزلہ زکام ہے تو آپ گھر میں آرام کیجیے. ان صاحب کی طرح بڑے مزے سے سو رہے ہیں صاحب, آپ گھر میں آرام کیجیے, پوری اچھی طرح آرام کیجیے تاکہ آپ باہر جائیں گے اسکول میں دفتر میں آپ کی وجہ سے وہ بیماری کسی اور کو ہی پھیل سکتی ہے. کوشش کیجیے گھر میں آرام کیجیے, وہ جو اسٹیم ہوتا ہے اسٹیم لیجیے, دوائیاں ٹائم پہ لیجیے تاکہ آپ صحیح ہو سکیں. پھر ہمارے پاس ایک اور مسئلہ ہے, اس پہ بچوں کو ہم خاص طور پہ میں بولوں گی, آپ اس بات کو سنیے اور بچوں کو سکھائیے کہ اگر آپ کو کھانسی یا چھینک آ رہی ہے تو ان سانپ کی طرح اپنی کونی کو اپنے منہ پہ رکھ کے کیجیے, چونکہ ہاتھوں پہ نہ کیجیے. وہی بات, ہاتھ ہر جگہ لگتے ہیں تو جراثیم پھیلنے کا زیادہ خطرہ ہے. کونی کے اندر آپ اس طرح کر سکتے ہیں تو اس سے کافی حد تک جو جراثیم آپ کے منہ سے نکل رہے ہیں باہر ہم ان کو روک سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس جو آتا ہے جی کہ اپنے چہرے کو نہ مسلیے, آنکھوں کو چہروں کو نہ مسلیے. اگر آپ کو ایسا کرنا بھی ہے تو ٹیشو پیپر نہ کپڑے والا, آپ کپڑے والا رومال مت لیجیے گا, کیونکہ وہ بار بار استعمال کرنے سے وہ جراثیم پھر سے ہمارے منہ پہ یا ہاتھ پہ لگ رہے ہیں. ٹیشو پیپر استعمال کیجیے اگر آپ کو اپنے ناک کو یا اپنے آنکھوں کو مسلنا بھی ہے, اور پھر ٹیشو پیپر کو فوراً ایک الگ سی تھیلی میں گھر میں بنائیے, اس میں پھینک دیجیے اور پھر اس کو فوراً گھٹا کر دیجیے اس کا, یعنی باندھ دیجیے اس کو تاکہ وہ جراثیم باہر نکل کے پھیلنا نہ شروع ہو جائیں. اور آخری اور سب سے اہم جو ہمارے پاس ہے جی, صفائی کا خاص خیال رکھیے. اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا بندہ یا بچہ ہے جس کو نزلہ زکام ہو رہا ہے, خاص طور پہ صفائی کا خیال رکھیے. ٹیبلز وغیرہ پہ بار بار آپ پوچھتے رہیے, اسکول کے اندر دفتر کے اندر جس ٹیبل پہ آپ کام کریں اس کو پوچھتے رہیے تاکہ یہ جراثیم نہ پھیل سکے. جی ناظرین چلتے ہیں لیتے کھانے پینے کا خوبصورت سا مزیدار سا بقا, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے. جی ناظرین میرے خیال سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں فوراً جی جی اگر ناظرین ہمارے ساتھی بتا رہے ہیں کہ حاضر ہے, اور پھر ہمیں جاتے لیتے ہیں خوبصورت سا وقفہ. جی جی ناظرین یہ پیچھے خوبصورت سے تصویر اور مزیدار سے تصویر دیکھ کے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے ہم انار کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں. جی کیونکہ موسم ہے, موسم انار کا ہے, انار کے سیزن آ گیا ہے, تو ناظرین میں آپ کو اس کی خصوصیات جلدی جلدی بتاتی ہوں. کہتے ہیں کہ انار میں ایک ایسی خصوصیت ہے جو آپ کے خون کو جمنے سے روکتی ہے, جو آپ کے پلیٹلیٹس ہیں جو خون کے اندر ان کو جمنے سے روکتی ہے. جی ناظرین آپ کے خون کے اندر کا جو آکسیجن لیول ہے جو آپ کے دل کے لیے بہت اچھا ہے, دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے بہت اچھا ہے, کہتے ہیں انار اس پہ کافی حد تک آکسیجن زیادہ ہوتا ہے. جی ہاں جن کو بلڈ پریشر ہے وہ انار ضرور کھائیے. کہتے ہیں کہ جن کو ہائی بلڈ پریشر ہے اس کو کم کرنے میں, بلڈ پریشر کو کم کرنے میں انار کافی حد تک مدد کرتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ ڈپریشن, جی جن کو ڈپریشن کی شکایت ہے جو بہت اداس رہتے ہیں, انار کے اندر ایک خاص قسم کے انزائمز ہیں جو آپ کو خوش کرتی ہیں. پھر کہتے ہیں کہ جن کو جو خواتین میں بریسٹ کینسر یا جو مرد ہزار میں پروسٹیٹ کینسر ہوتا ہے اس کے بھی حد کو کافی حد تک نیچے لے کے آتی ہے, اور اس سے بچاؤ کا ایک خاص ذریعہ ہے انار. اور پھر کہتے ہیں کہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرا بھرپور اور سرشار ہے یہ پھل, اور جن کو الزائمر کی جو خاندانی بیماری کی شکایت ہے اس کو بھی کافی حد تک کم کرتی ہے. ناظرین وقت بہت محدود ہے, میں جلدی جلدی بتاتی چلوں. کل کے جو ہمارے مہمان ہوں گے ڈاکٹر محسن محمد علی لواسانی صاحب ہوں گے, اور کل کا موضوع ہے افو درگزر. جی ناظرین اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اس بابرکت دن میں ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے اجازت